ये आकाशवाणी है। अब आप रत्ना पांडे से समाचार सुनिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करेंगे। दोपहर में श्री मोदी राजस्थान के अजमेर में एक रैली को संबोधित करेंगे। शाम को श्री मोदी का गाजियाबाद में एक रोड शो में भाग लेने का कार्यक्रम है। भारतीय रिजर्व बैंक ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर 4.5% रहने की संभावना व्यक्त की है। बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद विकास की दर 7% रहने का अनुमान है। बैंक ने लगातार सातवीं बार रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया है। श्री शक्तिकांत दास ने कल द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की और रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखा है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि इस वर्ष 29 मार्च को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अब तक के सर्वोच्च स्तर 645 अरब 60 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया है। पिछले तीन वर्षों की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय रुपए में सबसे कम उतार चढ़ाव रहा। भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही यूपीआई के माध्यम से नकद राशि जमा कराने की सुविधा प्रदान करेगा। फिलहाल यूपीआई का उपयोग धन के लेन देन के लिए किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक और धर्मनिरपेक्षता के विरूद्व घोषित करने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय पर रोक लगा दी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने यह निर्णय लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में तिहाड़ जेल में बंद भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता से पूछताछ की अनुमति दे दी है। ब्यूरो इस दौरान कविता के बयान दर्ज कर सकेगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने मतदान में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए चयनित जिलों के चुनाव अधिकारियों को मतदान केंद्र के अनुसार कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। उन्होंने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग कार्यनीतियां बनाने को कहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कल नई दिल्ली में 11 राज्यों के निगमायुक्त और चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक की। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के नामांकन पत्रों की कल जांच की गई। जम्मू कश्मीर में नामांकन पत्रों की जांच आज होगी। इस चरण में बाहरी मणिपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के साथ 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव 26 अप्रैल को होंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने गाजा में तत्काल युद्ध विराम और इसराइल पर हथियार प्रतिबंध के लिए एक प्रस्ताव को अपनाया है। प्रस्ताव में गाजा पट्टी के लिए किए गए संभावित युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए इसराइल को जवाबदेह ठहराने का भी आह्वान किया गया। ये प्रस्ताव तब आया जब इसराइल ने अंततः अभूतपूर्व अमरीकी दबाव के आगे घुटने टेक दिए और गजा में नए खाद्य गलियारे खोल दिए। 28 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। भारत सहित 13 देशों ने मतदान नहीं किया और अमरीका और जर्मनी सहित 6 ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। भारत ने वर्ष 2024-25 के लिए मालदीव को आवश्यक वस्तुओं के लिए अब तक के उच्चतम निर्यात कोटा को मंजूरी दे दी है। मालदीव में भारतीय उच्चायोग ने कहा है कि मालदीव सरकार के अनुरोध पर भारत ने आवश्यक वस्तुओं की निश्चित मात्रा और कोटा निर्धारित किया है। अमरीका में न्यूयॉर्क शहर, फिलाडेल्फिया और वाशिंगटन डीसी के कुछ हिस्सों में कल भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.8 मापी गई। अमरीकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भूकंप का केंद्र न्यू जर्सी के उत्तर पूर्व में न्यूयॉर्क शहर से 50 मील से भी कम पश्चिम में लेबनान में था। किसी प्रकार की क्षति होने की जानकारी नहीं मिली है। आईपीएल क्रिकेट में हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। जीत के लिए 166 रन का पीछा करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 11 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।